नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है जिंदगी शांत से। और आप सुन रहे हैं मुझे अपने होस्ट शांतनु सुनील सक्सेना यानी शान को इस सेगमेंट अनकही में। आज हम बात करेंगे हालात की, चाहे दुनिया के हों, अपने देश के हों या हमारे खुद के। खैर, हालात की बात निकली है तो सबसे पहले चर्चा जिसकी है देश में वही बात कर लेते हैं। अभी बीते दिनों जो हाथरस में हुआ वो कोई नई घटना नहीं थी, यहाँ पहले भी इस तरह के भयानक मंजर हुए हैं। कुछ महीने साल में उसी तरह के मंजर ना चाहते हुए भी दोबारा देखने को मिल ही जाते हैं। जब इस दशक की शुरुआत में निर्भया रेप केस हुआ था तब हम में से कई लोग सड़कों पर उतर आए थे और उस वक्त की सरकार से सवाल किए थे बेहतर कानून बनाने के लिए। आम लोग ही नहीं, उस वक्त की विपक्ष की पार्टी जो खुद आज सत्ता में है, उन्होंने सख्त से सख्त कानून लाए जाने की बात कही थी। वक्त बदला, हालात बदले, पर नहीं बदली तो नियत। जो काम पुरानी सरकार नहीं कर पा रही थी वही काम आज की सरकारें भी करने में नाकाम हैं। ऐसा हर बार होता आया है, बात वही होती है, एक्शन भी वही होता है, जिसमें हल्ला खूब होता है पर हल बिल्कुल नहीं, बस चेहरे बदलते रहते हैं। आंकड़ों की माने तो हर रोज देश में लगभग 87 रेप केसेस होते हैं। ये आंकड़े पिछले साल के हैं। इस तरह के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर केसेस में दोषी जान पहचान वाले ही होते हैं, पर सारे जानने वाले हों ऐसा भी जरूरी नहीं। कितनी बार ऐसा भी देखने को मिला है कि आपस में कोई जान पहचान ना होने के बावजूद ऐसे अपराध हुए हैं, चाहे हैदराबाद हो, उन्नाव हो, बलरामपुर हो या दिल्ली। छेड़छाड़ की वारदातों को भी शामिल कर लें तो गिनती इतनी बढ़ जाएगी कि गिनते गिनते थक जाएंगे, पर गिनती खत्म नहीं होगी। रोज के हजारों लाखों ऐसे वाक्य होते हैं। शुरुआत से जरूरत रही है सख्त कानून की, जो कि अब तक नहीं बन पाए हैं। ना ही कानून है, ना प्रशासन मदद करती है, और जो सबसे बड़े कारण है इन सब अपराधों के पीछे वो है यहाँ की पुरुष प्रधान सोच और मूल नैतिकताओं का पतन। नैतिकता यानी मॉरल्स, जिसे बचपन से ही सिखाए जाना चाहिए। परवरिश के तरीकों में भिन्नता भी एक कारण है। जहां लड़कियों को मान मर्यादा, चूल्हे चौके और गोल रोटी बनाने के लिए जोर दिया जाता रहा है, वहीं लोगों ने परिवार के लड़कों पे कभी किसी तरह से कोई दबाव बनाया ही नहीं। हालांकि सब एक से नहीं है, पर जो हैं हम बात भी उन्हीं की करते हैं क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही हैं। खैर, पुरुष प्रधानता का कारण है हमारा इतिहास, जिसमें हम उतने आधुनिक नहीं थे, ना तकनीक थी ना तरीके। ज्यादातर काम मेहनत कशी से और ताकत से होता था। अब चूंकि अधिकतर आदमियों की ताकत औरतों के मुकाबले ज्यादा रहती थी तो वो किसानी भी करते थे और सेना में भर्ती भी होते थे, हल भी चलाते थे और मजदूरी भी करते थे। इन्हीं सब चीजों से रुपया पैसा का इंतजाम भी हो जाता था। इन्हीं सब चीजों के कारण ये प्रधानता अपने आप कायम हुई। पर आज के समय में जहां आधुनिकता भी है और तकनीक भी, जहां औरतें घर चलाना भी जानती हैं और उसी घर के लिए कमाना भी, तो देश के कोने कोने और रग रग में बसी ये प्रधानता की मानसिकता ना ही केवल पुरातन है बल्कि पूरी तरह सड़ चुकी है। लड़कियों के बाहर निकलने पे आज भी समाज के कई तबकों को बेहद एतराज रहता है। कारण सोच ना बदलने का है और पुरानी सोच औरों पे थोपने का भी। फिर ऐसे लोग सत्ताधारी भी बन जाते हैं और अपने हिसाब से कानून को तरोड़ते मरोड़ते रहते हैं। खामियाजा भुगतता आम आदमी ही है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे आपको रोष भी आएगा, हताश भी महसूस करेंगे और निराशा भी होगी। फिर हम में से कई भूल जाएंगे और कई नजरअंदाज करेंगे, पर सोचेंगे नहीं कि ऐसे में हालात बदले कैसे जाएं। आप शुरुआत अपने घरों से ही कर सकते हैं। अगर आप अपनी लड़कियों के बाहर आने जाने का समय निश्चित करते हैं तो अपने लड़कों का समय भी निश्चित कीजिए। उनसे बात करिए और जानिए कि किस तरह की मानसिकता रख रहे हैं वो। कोशिश करें कि उनके दोस्त बन पाएं। अपने घर के छोटे बच्चों को बिना किसी भिन्नता के एक दूसरे से व्यवहार सिखाएं, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की। आस पड़ोस में इस तरह के प्रोग्राम चलाएं जहां इन सब विषयों पर खुल के बात हो सके। गलत नेताओं और पार्टियों का जमकर विरोध करें और अपने वोट की ताकत को जाया ना जाने दें कभी। कुछ और हालातों की बात भी कर लेते हैं, खास तौर पे गिरती अर्थव्यवस्था को लेके, सुरक्षा व्यवस्था को लेके, पर्यावरण को लेके और भविष्य को लेके। ये सब सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हर व्यक्ति का सोचना बहुत जरूरी है। गिरती अर्थव्यवस्था के कई कारण हैं, जिसमें काफी हद तक ना सोची समझी गई नीतियों को लागू होना है। दरअसल जहां भी हालात बदतर होते हैं वहां एक्सपर्ट्स की सलाह कम ही मानी जाती है। जहां हमारे देश में विद्वानों की कमी नहीं है, वहीं हम उनकी बातों को जितना तर्ज मिलना चाहिए उतना नहीं देते हैं। यही वजह है कि रघुराम राजन जैसे काबिल इकोनॉमिस्ट अब दूसरे देश की सेवा में कार्यरत हैं। फिर कोविड की वजह से गिरता व्यापार और बढ़ती बेरोजगारी इस समय हालातों को और मुश्किल बना रहे हैं। अगर हम अभी नहीं संभले तो आने वाला वक्त बहुत ही असीमित परेशानियों से भरा होगा। जो भी लोग इस एपिसोड को सुन रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि नई चीजें सीखिए जो आज की और आगे आने वाले वक्त में आपको काम आए। जितना वक्त पिछले 10 सालों में बदला है उससे कहीं ज्यादा आगे आने वाले 10 सालों में बदलेगा। जो नहीं बदलेगा खुद को वक्त के साथ, उसे संभालने का वक्त भी नहीं मिलेगा। पिछले कई महीनों से चल रहे चीन से सीमा पर विवाद कोई ठोस करवट नहीं ले रही, पर चीनी सेना की लगातार गहमा गहमी का बने रहना सुरक्षा के तौर पर सतर्क रहने वाला है। भारतीय सेना हालांकि हर तरह से जवाब देने में सक्षम है, पर कुछ मसलों का शांति से हल होना ही बेहतर होता है। ऐसे में आप ही इंटरनेट पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचें और सावधान रहें आपके फोन पर आने वाले ईमेल्स और मैसेजेस का, क्योंकि अगर स्थितियां खराब होती हैं तो सेन सबसे पहले आंतरिक रूप से इंटरनेट के जरिए नागरिकों को लगेगी, अगर वो सचेत नहीं रहे तो। किसी भी अननोन मैसेज या ईमेल के अंदर लिंक पे क्लिक करने से बचें। पर्यावरण और भविष्य फिलहाल एक सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं, और अगर जल्द ही कुछ ना किया गया तो एक के चक्कर में शायद दोनों से हाथ धोना पड़ जाएगा। जैसे कि सर डेविड एटनबोरो का कहना है, अगर हमने वातावरण सुधारने पर जोर नहीं दिया तो हम बहुत तेजी से अपने विलुप्तीकरण की तरफ बढ़ेंगे। विलुप्तीकरण यानी एक्सटिंक्शन। जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, हमारी प्रजाति भी हो सकती है। सर डेविड एक काबिल और जाने माने इतिहासकार हैं। रिसर्च के मुताबिक सारे दुनिया को मिलकर आने वाले कई सालों तक $500 बिलियन तक का खर्चा हर साल करना पड़ेगा अपने पर्यावरण को सुधारने और बचाने के लिए। इसके अलावा अगले 10 साल तक बेहद जरूरी है कि हम ग्रीन हाउस से जुड़ी सारी गतिविधियों को रोक दें या बिल्कुल कम से कम रखें, जैसा कि दुनिया ने लॉकडाउन के दौरान देखा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं या उस ओर प्रयास नहीं करते हैं तो यकीनन आने वाला वक्त अगली पीढ़ियों के लिए बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आप डिस्कवरी चैनल पर आ रहे शो इंडिया इन 2050 को भी देख सकते हैं। चीजों को सुधारने के लिए हम सब भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। जहां आप रहें वहां लोकल जगह के हिसाब से पेड़ लगाएं। हर जगह हर तरह के पेड़ लगा के भी कामयाबी नहीं मिलती। प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, फिर भी ना हो पाए तो तभी इस्तेमाल करें जब कोई और विकल्प ना हो। आबादी जितनी हो सके कम रखें। सरकारों पर जोर बनाएं जिससे आबादी को लेके कानून बन सके। कोशिश करें कि आप दुनिया में आ चुकी जिंदगी को एक मौका दें उसे अपनाकर। शाकाहार यानी वेजिटेरियन डाइट अपनाएं। रिसर्च में पाया गया है कि मांसाहार ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने में एक सबसे बड़ा कारण है। ये कैसे पॉसिबल है हम डिटेल में किसी अगले एपिसोड में कवर कर सकते हैं। आप इंटरनेट की मदद से भी जान सकते हैं या फिर मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे पिंग कीजिए, सारी जानकारी वहां दे दी जाएगी। पानी भी उतना ही इस्तेमाल करें जितनी जरूरत है, जैसे कि आज भी कई घरों में पाइप लगा के गाड़ियां धोने और पूरे पूरे घर धोए जाने का रिवाज है। इसमें सबसे ज्यादा पानी बेकार होता है। पानी का जमीनी स्तर पिछले कई सालों में काफी कम हुआ है, अन्यथा बिजली ना खर्चें, जब जरूरत में ना हो तो स्विचेस बंद ही रखें, हो सके तो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी इस्तेमाल में लाएं। ये लगवाना बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता, साथ ही में सरकार से सब्सिडी भी मिलती है। ढूंढेंगे तो आपको कई और तरीके इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, मगर शुरुआत बहुत जरूरी है। रही बात मजहब आस्था और जात पात की, तो ये चीजें अगर आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक निखार लाएं तो ही इन पर एतबार करें। जब ये चीजें आपको नफरत, लड़ाई और दुश्मनी की तरफ ले जाने लगें, तभी सोच लें कि आपका ईमान ही आपका मजहब आस्था और जाति है। जिस तरह से दुनिया में सांप्रदायिक नफरत फैलाई जा रही है, बहुत आसान है इन सब चीजों की चपेट में आ जाना। पर ऐसे में आप हमेशा खुद से सवाल पूछ सकते हैं। यकीनन अगर आप सच्चे और सही हैं तो आपको जवाब में शांति और मोहब्बत ही मिलेगी। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और बदलाव बेहद जरूरी है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अपना फीडबैक भी मुझ तक जरूर पहुंचाएं। आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पर लिख सकते हैं या सीधे मेरी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। आपका पसंदीदा शो अब दुनिया भर के सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। उम्मीद है आपका साथ बना रहेगा। जल्द ही एक नई पेशकश लेके हाजिर होऊंगा आपके इसी पसंदीदा शो में, जिसका नाम है जिंदगी शान से। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।